मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 21 अगस्त 2017 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दो दिनों के बाद मित्रों हमारी मुलाकात हुई है और अब हम लगातार 5 दिन तक अपनी मुलाकातों में लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित कुछ विषयों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह विषय तो समझ लीजिए कि बहुत ही आसान सा है, सरल सा है और हो सकता है कि आप सब उसे बहुत अच्छे से जानते हैं भी हैं, लेकिन कल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण सुना। उदाहरण क्या, यूं कह लीजिए कि एक सच्चाई सुनी जो इनफैक्ट कम से कम मुझे तो मालूम नहीं थी। फिर मैंने उस पर सोचना शुरू किया और उसमें मुझे लाइफ मैनेजमेंट के कुछ तत्व झिलमिलाते हुए से नजर आए, तो मुझे लगा कि इस फैक्ट को भी मैं अपने प्रिय श्रोताओं तक पहुंचाऊं, उनको भी यह जानकारी हो और हो सकता है आप लोगों को पहले से ही यह जानकारी हो भी, और इसी जरिए हम लोग कुछ लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी बातचीत कर लें। और मुझे ये भी लगता है फ्रेंड, सच पूछिए तो कभी कभी जरा सा आसान से विषयों पर भी बातचीत की जानी चाहिए। गरिष्ठ लगातार खाते रहने से पाचन शक्ति पर दुष्प्रभाव तो उसका पड़ता ही है, तो कभी हल्की फुल्की बातें भी होनी चाहिए जो पचाने में ज्यादा कठिनाई न हो। तो मित्रों, जो फैक्ट मैंने सुना वो फैक्ट ये था कि जो चमगादड़ होता है वो चमगादड़ के 4 पैर होते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मैं समझता था कि चमगादड़ के 2 ही पैर होंगे, जैसे दूसरे पक्षियों के 2 पैर होते हैं। अब देखिए, हम जितने भी बर्ड्स देखते हैं और चमगादड़ एक बर्ड्स है, पक्षी है, तो 2 पैर के आपको गोरैया देख लीजिए, तोता देख लीजिए, बगुला देख लीजिए, सबके आपको 2 पैर दिखाई देंगे। तो मेरे दिमाग में भी यही धारणा बनी हुई थी कि जो भी उड़ने वाले पक्षी हैं इनके 2 ही पैर होते होंगे, लेकिन चमगादड़ के 4 पैर होते हैं और नो डाउट कि वो उसके दो पंख भी होते हैं जैसे दूसरे पक्षियों के होते हैं। सवाल यह है कि चमगादड़ के पंख भी हैं और चमगादड़ के 4 पैर भी हैं, 2 × 4 यानी कि उसकी पैरों की संख्या चौपायों जैसी है, जैसे दूसरे जो पशु हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, ये 4 पैर वाले पशु हैं। आदमी भी एक तरह का पशु ही है लेकिन ये 2 पैरों वाला पशु है। किसी जमाने में ये भी चौपाया हुआ करता था जब वो हाथों के बल और पैरों के बल चलता था। धीरे धीरे उसके जो हाथ हैं वो धरती की गुलामी से आजाद हुई और वहीं से उसके विकास की आप कह लीजिए कि एक यात्रा शुरू भी हुई। जैसे ही गुलामी से मुक्त हुए हमारे दोनों हाथ, हम तनकर खड़े हुए और फिर बदलाव की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई। तो आदमी तो चलिए चौपाया था, 2 पाया बना और लगातार आगे बढ़ता चला गया, लेकिन ये जो चमगादड़ है अभी भी चौपाया ही है। तो मुझे लगा कि जब ये चौपाया है, गाय को हम पशु कहते हैं, जितने भी चौपाए हैं आप देखिए हम उन्हें पशु मानते हैं, एनिमल्स मानते हैं, बर्ड्स नहीं कहते हैं, तो फिर इस चमगादड़ को हम पक्षी क्यों कहते हैं? उसको भी हम चौपाया मानते हुए 4 पैर वाला है तो पशु कह सकते हैं, लेकिन हम पशु नहीं मानते क्योंकि पक्षी उड़ता है और चमगादड़ भी उड़ता है और जो दूसरे पशु हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, 4 पैरों वाले पशु उड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बस इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा दिमाग में हलचल सी होने लगी और एक अच्छा सा विषय मिल गया सोचने के लिए, नया सा विषय। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर, इस समस्या पर, या कह लीजिए इस प्रश्न पर जो कुछ मैं सोच पाया हूं थोड़ा बहुत वह आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग भी अपने तरफ से सोचिएगा और अपने साथियों से शेयर कीजिएगा, कुछ नई बात निकल कर आती है तो, और यदि आप मुझसे भी शेयर करेंगे तो मुझे भी बेहद खुशी होगी। दोस्तों, मेरा जो निष्कर्ष रहा वो ये रहा कि चमगादड़, मतलब मैंने तो उसको चलते हुए कहीं नहीं देखा है, हालांकि वो चल सकता है, उन्होंने ये भी बताया कि वो चल सकता है, लेकिन मैंने चलते हुए नहीं देखा। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने देखा भी होगा, मैंने 2 ही रूपों में उन्हें देखा है, या तो वो उड़ रहे हैं या आप कह लीजिए कि वो लटका हुआ है, लटका हुआ है मतलब पेड़ों में आप देखेंगे तारों पर वो लटके हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये उड़ता है यानी कि 4 पैर होने के बावजूद वह उन पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं कर रहा है, लटकने के लिए तो कर रहा है, लटकने के लिए तो दूसरे पक्ष भी कर लेते, बैठने के लिए कर लेते, लेकिन जब इसे जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो यह पंखों का इस्तेमाल करता है, और चूंकि वह पंखों का इस्तेमाल करता है क्या इसीलिए उसे पक्षी मान लिया गया? वैसे पक्षी शब्द में जो पक्ष है उसका मतलब पंख से ही होता है ना, तो जिसमें पंख होंगे वह पक्षी होगा, जानवरों में पंख नहीं होते हैं तो वह पक्षी नहीं है, है ना। तो यहां एक बात तो ये समझ में आती है, सीधी सीधी समझ में आती है, लेकिन मैंने इसे लाइफ मैनेजमेंट से थोड़ी अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश की है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनसे हम काम करते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो हम काम करते हैं वही हमारी पहचान होती है। चूंकि चमगादड़ अपने पंखों से काम ले रहा है तो उसकी जो पहचान है वो पंखों से काम लेने वाली प्रजातियों के समूह से होगी, उसे हमने पक्षी कह दिया। और यदि वह चल रहा होता तो हो सकता है कि हम उसे कुछ और भी कहते, भले ही उसके पंख क्यों न हो, उसे हम और भी कोई नाम दे सकते थे। तो यहां खासकर जो मैंने लाइफ मैनेजमेंट के लिए विषय निकाला है मित्रों, वह यह कि हम जो काम करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। अब आप देखिए कि हम अपने जीवन पर इसे उतार कर देखें। हम कहते हैं वह दुकानदार है, राइट, वह डॉक्टर है, वह अफसर है, वह इंजीनियर है, वह सीए है, वह मां है ना, वह गृहिणी है, ये सारी बातें हम कहते हैं। तो ये क्यों दुकानदार है, ये क्यों इंजीनियर है, ये क्यों डॉक्टर है? तो साफ साफ दिखाई देता है कि हमने उस व्यक्ति की जो पहचान बनाई है वह उसके प्रोफेशन से बनाई है, जो उसकी कॉमन आइडेंटिटी है। अदरवाइज वो व्यक्ति भी है ना, उस व्यक्ति के रूप में उसका एक नाम भी है, व्यक्ति के रूप में उसका नाम है, और संबंधों के रूप में उसकी एक रिलेशनशिप भी है ना, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है, किसी का चाचा है। तो दो तीन चीजें देखिए अब हमारे सामने आ गई। नंबर वन, प्रोफेशन, वह हमारी पहचान होती है। दूसरा, हमारे रिलेशंस, वो हमारे पहचान बनते हैं। और तीसरा है हमारा नाम, जो हमारी पहचान बनता है। लेकिन इसमें अब जो अंतर है मित्रों, वो अंतर यह है कि देखिए रिलेशनशिप का दायरा तो बहुत कम होता है। जिनके साथ रिलेशन होंगे वही उनको उस रूप में जानेंगे, अदरवाइज कोई क्यों उस रूप में जानेगा, और ना उस रूप में उन्हें कोई बाहर का व्यक्ति पुकारेगा। आपस के लोग जो रिलेशन से जुड़े हुए हैं वो तो उन्हें उस रूप में पुकारेंगे क्योंकि वो जानते हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति तो नहीं पुकारेगा। तो यानी ये जो रिलेशनशिप की जो हमारी पहचान है इसका दायरा बहुत छोटा है। इसके बाद फिर नाम का दायरा आता है, राइट। नाम का दायरा इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब जो हमारे अन्य परिचित हैं, जो हमारे रिलेशन में तो नहीं है लेकिन हमारे परिचित है, जैसे मान लीजिए हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे ऑफिस के लोग, हमारे दोस्त, वो अब हमें नाम से जानते हैं। और जब आइडेंटिफाई करने की बात होती है तब वो नाम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो जो नाम है वो नाम हमारे रिलेशंस के दायरे से बड़ा हो जाता है, राइट। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं मैं अब उस पर आता हूं। लेकिन जो हमारा काम है, अब आप देखें कि वो काम क्या है, उसका दायरा क्या है। उसका दायरा विशाल है, जो काम का दायरा है वो विशाल है, सबसे बड़ा है। अगर हम आइंस्टीन कहते हैं तो आइंस्टीन सुनते ही हमारे दिमाग में एक वैज्ञानिक आ जाता है, एक वैज्ञानिक, यानी कि वो साइंटिस्ट थे, ये हमारे दिमाग में तुरंत कौंधता है। अब आइंस्टीन इससे पहले जो मैंने दो पहचानों की बात कही वे भी थे, उनकी भी पत्नी थी, परिवार था, उनका भी नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके साथ के लोग उन्हें अल्बर्ट कहके ही पुकारते होंगे, आइंस्टीन कहकर के ही पुकारते होंगे। लेकिन वह जो उनका नाम था, चाहे वो संबोधन देने वाला नाम हो, चाहे वह संबंधियों से संबंधित नाम हो, आप देखिए कि वो हमारी पहचान नहीं बनती है। पहचान क्या बनती है, कौन बनती है? पहचान बनती है वह जो हमारा इनफैक्ट काम होता है, जिसे मैं कहना चाहूंगा कि काम बोलता है, काम काउंट करता है, उसी की अहमियत होती है। दोस्तों अब ये जो काम है इसे मैं थोड़ा सा दो भागों में बांटूंगा। जनरली हम जब काम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि जिससे हमारा जीवन यापन होता है, है ना। मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, मजदूर, किसान, जिसकी भी हम बात करेंगे, तो इससे हमारा जीवन यापन होता है, इससे हमारा पेट भरता है और ये हमारे लिए जरूरी है। ये हमारा एक काम हुआ। दूसरा जो हमारा काम है, मुझे लगता है जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूं, और वो ये कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कंडक्ट और बिहेवियर है, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं काम में शामिल होता है। क्योंकि हम दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसमें ये बिहेवियर भी हमारा शामिल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर का काम इलाज करना है, और वो जिस मरीज का इलाज कर रहा है उस मरीज के साथ उसका एक बिहेवियर पैटर्न भी है, उसका व्यवहार भी होगा। साइंटिस्ट है उसका भी व्यवहार होगा, आर्टिस्ट है उसका भी व्यवहार होगा, क्योंकि वो समाज में है तो समाज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। मतलब घर परिवार के लोगों से लेकर के वो समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और जब वो इंटरेक्शन कर रहा है तो प्रोफेशन के रूप में तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो व्यक्ति के रूप में भी कर रहा है। जैसे एक दुकानदार, मैं दुकान में अगर कुछ उसके सामान खरीदने जाता हूं तो बट नेचुरल है कि मैं उसके लिए एक कस्टमर हूं, और मेरे लिए वो एक शॉपकीपर है, वो एक दुकानदार है। मैं पैसे दूंगा और वो मुझे सामान देगा, राइट। तो हमारा ये संबंध है, लेकिन क्या हमारा बिल्कुल यही संबंध है? इन सब के होने के बावजूद, क्योंकि संबंध तो यही है, लेकिन इसके बावजूद मैं उससे एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न की उम्मीद करता हूं कि वो मुझसे अच्छे से बात करेगा, अच्छे से पूछेगा, और ठीक इसी तरह से वो दुकानदार मुझसे भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न की एक्सपेक्टेशन है उसकी, कि ये मुझसे अच्छे से बात करेंगे। भले ही ये पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फेंक कर पैसा देंगे, अच्छे से अपना सामान मांगेंगे। तो अब आप देखें कि हम जो प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशनल काम के करने में जो इंटरेक्शन का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो हम सबका बिहेवियर है, हम सबका आचरण है। तो दोस्तों, जब हम काम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इन दोनों भागों में, दो भागों में बांट देना चाहिए। एक प्रोफेशन जो हम कर रहे हैं, और दूसरा है हमारा आचरण जो जिसके माध्यम से हम उसे कर रहे हैं, और इस तरह से एक कंप्लीट व्यक्तित्व बनता है, हमारी एक पूरी पहचान बनती है। तो क्यों नहीं मित्रों, हम इन दोनों को लेकर चलें और उसी तरह से हम अपनी पहचान स्थापित करें जिस तरह से चमगादड़ उड़ करके उसने चौपाय होने के बावजूद पक्षी होने की अपनी पहचान स्थापित कर ली है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आप सब भी इस पर विचार करें, और अगर आप अपने कुछ नए विचार होंगे, अगर मुझे उससे अवगत कराएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के लाइफ मैनेजमेंट को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।